नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। कैरोलिन क्रियाडो पेरिस की इनविजिबल विमेन एक शोध आधारित गैर कथात्मक पुस्तक है जो रोजमर्रा की दुनिया में मौजूद जेंडर डेटा गैप की पड़ताल करती है। इसका मुख्य तर्क है कि अनेक संस्थाएं, उत्पाद और नीतियां पुरुष को मानवीय अनुभव का सामान्य नमूना मानकर बनाई गई है, जबकि महिलाओं के शरीर, काम, यात्रा, सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारियों से जुड़ा डेटा अनुपस्थित या अपर्याप्त रहता है। लेखिका इस अनुपस्थिति को केवल प्रतिनिधित्व की समस्या नहीं बल्कि निर्णय लेने की समस्या मानती है। जब आंकड़े अधूरे हों तो संसाधनों का वितरण, जोखिम का आकलन और डिजाइन के मानक भी अधूरे रह जाते हैं। पुस्तक स्वास्थ्य सेवा, कार्यस्थल, परिवहन, सार्वजनिक ढांचे, तकनीक, अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से उदाहरण लेकर दिखाती है कि कथित रूप से तटस्थ व्यवस्था भी व्यवहार में असमान परिणाम दे सकती है। इसका उद्देश्य यह कहना नहीं है कि हर पुरुष केंद्रित निर्णय जानबूझकर भेदभावपूर्ण होता है, बल्कि यह बताना है कि अनदेखे पूर्वग्रह, डेटा की कमी और निर्णयकारी संस्थाओं में सीमित दृष्टिकोण मिलकर महिलाओं को व्यवस्थित रूप से अदृश्य बना देते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डिफॉल्ट मेल की धारणा और अधूरे डेटा का संस्थागत प्रभाव। पुस्तक का केंद्रीय विचार डिफॉल्ट मेल है, अर्थात पुरुष को सामान्य मनुष्य और महिला को उससे अलग विशेष स्थिति मानने की प्रवृत्ति। यह धारणा भाषा, शोध पद्धति और प्रशासनिक फैसलों में अक्सर बिना घोषित हुए काम करती है, जब किसी सर्वेक्षण में घरेलू काम, देखभाल या असुरक्षित यात्रा के अनुभवों को पर्याप्त रूप से नहीं मापा जाता, तब यह निष्कर्ष निकल सकता है कि वे नीति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन माप न होना समस्या न होने का प्रमाण नहीं है। क्रियाडो पेरिस दिखाती है कि डेटा संग्रह के आरंभिक प्रश्न ही तय करते हैं कि किसका जीवन दिखाई देगा और किसका नहीं। यदि नमूने, औसत और सफलता के मानक मुख्यतः पुरुषों के अनुभव से बनाए जाएं, तो महिला विशिष्ट जरूरतें अपवाद जैसी प्रतीत होने लगती है। इसका परिणाम केवल गलत आंकड़ा नहीं, गलत प्राथमिकता है। बजट, अनुसंधान और सार्वजनिक सेवाएं उस जानकारी पर आधारित होती हैं जो उपलब्ध है। इसलिए जेंडर डेटा गैप एक तकनीकी कमी के साथ साथ सत्ता और जवाबदेही का प्रश्न भी बन जाता है। पुस्तक पाठक को हर तटस्थ दिखने वाले आंकड़े के सामने यह पूछने के लिए प्रेरित करती है कि डेटा किससे लिया गया, किसे छोड़ा गया और अनुपस्थिति से किसे नुकसान हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य और चिकित्सा में पुरुष शरीर को मानक मानने की कीमत। इनविजिबल विमेन चिकित्सा क्षेत्र को जेंडर डेटा गैप के सबसे गंभीर उदाहरणों में रखती है, क्योंकि यहां अधूरा ज्ञान निदान, दवा और जीवन रक्षा से जुड़ता है। पुस्तक बताती है कि लंबे समय तक अनेक चिकित्सीय अध्ययनों और पाठ्य संदर्भों में पुरुष शरीर को सामान्य मान लिया गया। महिलाओं को हार्मोनल चक्र या गर्भावस्था जैसी जटिलताओं के कारण शोध से बाहर रखना सुविधाजनक समझा गया, पर इससे महिला शरीर के बारे में साक्ष्य का अभाव बना रहा। लेखिका विशेष रूप से इस बात पर जोर देती है कि बीमारी के लक्षण, दवाओं के प्रभाव और जोखिम के पैटर्न स्त्री पुरुष में एक जैसे मान लेना सुरक्षित धारणा नहीं है। उदाहरण के लिए, हृदय संबंधी समस्याओं के प्रचलित लक्षणों का मॉडल पुरुष अनुभवों से अधिक प्रभावित रहा है, जिससे महिलाओं के अलग संकेतों को कम गंभीर समझे जाने का जोखिम बढ़ता है। यहां पुस्तक का तर्क जैविक नियतिवाद नहीं है। वह यह मांग करती है कि शोध में लिंग के आधार पर डेटा जुटाया और विश्लेषित किया जाए, ताकि समान उपचार का अर्थ वास्तविक रूप से उपयुक्त उपचार हो। स्वास्थ्य व्यवस्था में निष्पक्षता के लिए महिलाओं को केवल पुरुषों के छोटे संस्करण की तरह नहीं, स्वतंत्र शोध विषय की तरह देखना जरूरी है। तीसरा, कार सुरक्षा, उत्पाद डिजाइन और कथित एक आकार सभी के लिए का भ्रम पुस्तक डिजाइन की दुनिया में छिपे पुरुष केंद्रित मानकों को ठोस ढंग से सामने लाती है। क्रियाडो पेरिस का मुख्य प्रश्न है कि जब कोई वस्तु एक आकार सभी के लिए कहती है, तो वह वास्तव में किस शरीर, किस हाथ, किस आवाज या किस दैनिक व्यवहार के लिए बनी है। कार सुरक्षा इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। लंबे समय तक परीक्षणों और सुरक्षा मानकों में औसत पुरुष शरीर की बनावट को प्रमुख आधार बनाया गया, जबकि महिलाओं की बैठने की स्थिति, शारीरिक अनुपात और दुर्घटना में जोखिम अलग हो सकते हैं। पुस्तक के अनुसार इस तरह की उपेक्षा महिलाओं के चोटिल होने की संभावना को बढ़ा सकती है। यही तर्क मोबाइल फोन, कार्यस्थल के उपकरण, सुरक्षात्मक वर्दी और आवाज पहचानने वाली तकनीकों तक फैलता है। खराब फिटिंग को अक्सर व्यक्तिगत असुविधा समझ लिया जाता है, जबकि वह डिजाइन प्रक्रिया में अनुपस्थित डेटा का संकेत हो सकती है। लेखिका डिजाइनरों के इरादों पर सरल पल लगाने के बजाय प्रक्रिया की कमी दिखाती है। यदि परीक्षण समूह विविध नहीं है, तो उत्पाद की विफलता पहले से निर्मित होती है। पुस्तक का व्यावहारिक निष्कर्ष है कि समावेशी डिजाइन कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं बल्कि गुणवत्ता, सुरक्षा और उपयोगिता की बुनियादी शर्त है। चौथा, शहर परिवहन और सार्वजनिक सुविधाओं में महिलाओं की अलग गतिशीलता। इनविजिबल रिमेम बताती है कि शहर और सार्वजनिक ढांचा केवल सड़कों, इमारतों और समय सारणियों का मामला नहीं है। वे इस बारे में भी धारणाएं व्यक्त करते हैं कि नागरिक कैसे चलते फिरते और समय बिताते हैं। पारंपरिक परिवहन योजना अक्सर घर से कार्यस्थल और वापस आने वाली सीधी यात्रा को प्राथमिक मॉडल मानती है, लेकिन महिलाओं की यात्राएं देखभाल के काम, बच्चों या बुजुर्गों की जिम्मेदारी, खरीदारी और कई छोटे पड़ावों के कारण अधिक जटिल हो सकती है। यदि योजना इन पैटर्नों को दर्ज ही नहीं करती तो सेवा का नक्शा उपयोगकर्ताओं की वास्तविक जरूरतों से दूर हो जाता है। पुस्तक सुरक्षा के अनुभव को भी महत्वपूर्ण डेटा मानती है। रोशनी, पैदल मार्ग, सार्वजनिक शौचालय और बस स्टॉप का स्थान महिलाओं की आवाजाही और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। सार्वजनिक शौचालयों का उदाहरण दिखाता है कि बराबर जगह आवंटित करना हमेशा बराबर पहुंच नहीं देता, क्योंकि उपयोग का समय और देखभाल संबंधी जरूरतें अलग हो सकती हैं। इस विश्लेषण का उद्देश्य महिलाओं को एक समान समूह बताना नहीं है, बल्कि यह है कि योजनाकार औसत नागरिक की कल्पना पर निर्भर रहने के बजाय अलग आयु, आय, क्षमता और देखभाल की जिम्मेदारियों वाले लोगों के अनुभवों का डेटा ले। तभी सार्वजनिक स्थान वास्तविक अर्थ में सार्वजनिक बन सकते हैं। अंत में काम, अवैधनिक देखभाल और संकट नीति में अदृश्य श्रम का सवाल। पुस्तक आर्थिक और सार्वजनिक नीति के उस पक्ष पर ध्यान देती है जहां महिलाओं का काम मौजूद तो है पर अक्सर औपचारिक आंकड़ों में पूरा दर्ज नहीं होता। घर का प्रबंधन, बच्चों, बीमार लोगों और बुजुर्गों की देखभाल तथा दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्था जैसे कार्य समय लेते हैं और भुगतान वाले रोजगार में भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं। जब नीतियां केवल वेतनभोगी काम, आय या पारंपरिक कार्य घंटों को उत्पादकता का संकेत मानती है, तब इस श्रम का मूल्य और उससे जुड़ी बाधाएं अदृश्य रह जाती है। क्रियाडो पेरेज इस अदृश्यता को पेंशन, आय, पदोन्नति और समय की उपलब्धता से जोड़ती है। संकट और आपदा प्रबंधन में भी यही समस्या तीखी हो सकती है। राहत केंद्रों, खाद्य वितरण, परिवहन या अस्थायी आवास की योजना यदि महिलाओं की सुरक्षा, देखभाल भूमिका और अलग गतिशीलता को नहीं समझती तो सहायता समान रूप से पहुंच नहीं पाती। पुस्तक यहां डेटा को मानवीय अनुभव का विकल्प नहीं, उसके प्रति उत्तरदायित्व का साधन मानती है। लिंग के आधार पर अलग आंकड़े जुटाना पर्याप्त नहीं होगा यदि उन्हें निर्णयों में शामिल न किया जाए। सार्थक बदलाव के लिए संस्थाओं को यह देखना होगा कि किसके समय, श्रम और जोखिम को उनकी परिभाषाओं ने अब तक सामान्य मानकर नजरअंदाज किया है। निष्कर्ष में, इनविजिबल रिमेन उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो सार्वजनिक नीति, स्वास्थ्य, शहरी योजना, उत्पाद डिजाइन, तकनीक, शोध, मानव संसाधन या प्रबंधन से जुड़े हैं। फिर भी इसका दायरा विशेषज्ञों तक सीमित नहीं है। यह आम पाठक को रोजमर्रा की असुविधाओं और असमानताओं के पीछे काम कर रही संरचनाओं को पहचानने की भाषा देती है। पुस्तक का बौद्धिक लाभ यह है कि यह भेदभाव को केवल व्यक्तिगत पूर्वग्रह या खुले शत्रुतापूर्ण व्यवहार तक सीमित नहीं रखती। वह दिखाती है कि नमूने चुनने, प्रश्न बनाने, औसत तय करने और संसाधन बांटने की प्रक्रियाएं भी असमानता पैदा कर सकती है। इसका व्यावहारिक लाभ एक सरल लेकिन कठोर जांच पद्धति में है। किसी भी नीति, उत्पाद या सेवा के लिए पूछा जा सकता है कि उसके डेटा में कौन शामिल है, कौन गायब है और उस कमी का परिणाम किस पर पड़ता है। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में इसका अलगपन इसकी व्यापकता और प्रमाण केंद्रित संरचना में है। यह केवल सिद्धांत या व्यक्तिगत अनुभवों पर नहीं दिखती बल्कि चिकित्सा से लेकर परिवहन और आपदा नीति तक अलग क्षेत्रों को एक साझा डेटा समस्या से जोड़ती है। सामग्री की घनत्व कुछ पाठकों को भारी लग सकती है क्योंकि इसमें लगातार उदाहरण और आंकड़े आते हैं। फिर भी यही संचयी पद्धति इसकी ताकत है। पुस्तक यह स्थापित करती है कि बेहतर डेटा अपने आप न्याय नहीं लाता, लेकिन अधूरे डेटा पर बना संसार निष्पक्ष होने का दावा भी नहीं कर सकता। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कारोलिन क्रियाडो पेरेज, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।